एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत चर्चा में रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR।
नमस्ते। हाँ, CSR, और इस पे हम बात करेंगे जेरेमी मून के काम के हवाले से। और ये विषय इतना जरूरी क्यों है आजकल? शायद इसलिए कि भाई अब हम कंपनियों को सिर्फ मतलब प्रोडक्ट बेचने वाली मशीनें नहीं समझते, समाज की उम्मीदें काफी बदल गई हैं।
बिल्कुल सही। अब लगता है कि कंपनियों की भी जिम्मेदारी बनती है पर्यावरण के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, समाज के लिए भी कुछ करें, और ये सिर्फ कोई दान दक्षिणा या इमेज बनाने की बात नहीं रह गई है।
हाँ, बिल्कुल नहीं।
ये तो अब कंपनी की स्ट्रेटजी, उसकी साख, उसका भविष्य सब इससे जुड़ गया है। तो चलिए जेरेमी मून के नजरिए से इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं।
हाँ जरूर, तो शुरू करते हैं जेरेमी मून से ही। कौन है ये और CSR पर इनकी बात इतनी अहम क्यों है?
जेरेमी मून ये कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हैं और CSR और बिजनेस एथिक्स मतलब कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी और व्यावसायिक नैतिकता, इस फील्ड के जाने माने विद्वान हैं। कई दशकों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इन्होंने कोपेनहेगन और नॉटिंघम में CSR सेंटर्स भी शुरू करवाए हैं। मतलब इनका काम काफी वजन रखता है।
अच्छा, और इनके काम में ऐसा क्या खास है, मतलब बाकी लोगों से अलग कैसे है इनका नजरिया?
देखिए, मून का सबसे बड़ा योगदान है उनका तुलनात्मक नजरिया। वो सिर्फ एक देश जैसे अमेरिका के मॉडल को नहीं देखते हैं, वो ये देखते हैं कि दुनिया भर में CSR कैसे अलग अलग शक्ल लेता है और क्यों लेता है। उन्होंने एक बहुत ही प्रभावशाली फ्रेमवर्क दिया है, एक्सप्लिसिट बनाम इम्प्लिसिट CSR का।
अच्छा, एक्सप्लिसिट बनाम इम्प्लिसिट, ये क्या है?
हाँ, ये समझने में मदद करता है कि भाई एक अमेरिकी कंपनी और मान लीजिए एक जर्मन कंपनी, इनके CSR करने के तौर तरीके अलग क्यों हो सकते हैं।
ओके, तो मतलब वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि कंपनियों को क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये समझा रहे हैं कि CSR आज जैसा है वैसा क्यों बना, ये अलग अलग समाजों में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में कैसे पनपा।
बिल्कुल, उनका नजरिया बहुत विश्लेषणात्मक है। वो सतह के नीचे जाकर कारणों को देखते हैं।
ये दिलचस्प है।
तो फिर मून के काम का निचोड़ क्या निकलता है, वो CSR को कैसे देखते हैं?
देखिए, मून साफ कहते हैं कि CSR कोई ऐसी चेकलिस्ट नहीं है कि कंपनी ने चार अच्छे काम कर दिए और बस हो गया। वो मानते हैं कि ये एक बहुत ही गतिशील चीज है, लगातार बदलती रहती है, समाज इसे गढ़ता है, और ये किस संदर्भ में हो रहा है उस पर बहुत निर्भर करता है।
यानी टाइम के साथ बदला है।
हाँ बिल्कुल, समय के साथ विकसित हुआ है, और अलग अलग देशों में, संस्कृतियों में, राजनीतिक सिस्टम में इसके मायने और इसके रूप वो बहुत अलग अलग है।
हाँ, और उनका एक मुख्य तर्क ये भी है कि CSR को सिर्फ चैरिटी या पब्लिसिटी स्टंट समझना, ये एक बहुत बड़ी भूल है।
बिल्कुल,
ये असल में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी कैसे चलाई जाती है उस व्यवस्था का एक पेचीदा हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे व्यापार, समाज और सरकार इनके रिश्ते बदल रहे हैं। कंपनियां अब सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीनें नहीं हैं, वो समाज का हिस्सा हैं और उनकी कई हितधारकों के प्रति जिम्मेदारियां हैं।
हाँ, हितधारक यानी स्टेक होल्डर्स, जैसे कर्मचारी, ग्राहक, समुदाय, पर्यावरण, ये सब।
बिल्कुल,
और दिलचस्प बात ये है कि मून के हिसाब से ये जिम्मेदारी सिर्फ नैतिक नहीं है, मतलब सिर्फ अच्छा काम करने की बात नहीं है, लंबे समय में बिजनेस के टिके रहने के लिए ये आर्थिक रूप से भी जरूरी है।
अच्छा, आर्थिक रूप से कैसे?
देखिए, जो कंपनियां अपने सामाजिक और पर्यावरणीय असर पर ध्यान नहीं देती, उन पर ग्राहकों का, निवेशकों का, सरकारों का, समाज का दबाव बढ़ता है। तो CSR अब कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही, ये एक तरह से व्यापार करने की बुनियादी जरूरत बन गई है, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है।
सही कहा। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये CSR की जड़ें कहाँ हैं, कहाँ से आया कॉन्सेप्ट?
जैसा हमने कहा, कोई एक परिभाषा तो है नहीं, ये एक छाते जैसा है, एक अम्ब्रेला टर्म। इसके नीचे कई तरह की जिम्मेदारियां आती हैं। आर्थिक जिम्मेदारी तो है ही भाई, मुनाफा कमाना है,
वो तो है ही।
फिर कानूनी जिम्मेदारी है, नियम कानून मानने हैं। नैतिक जिम्मेदारी है, सही गलत का ध्यान रखना है। और फिर है विवेकाधीन जिम्मेदारी, मतलब अपनी मर्जी से समाज के लिए कुछ करना, जैसे दान देना। एक आर्ची कैरल का पिरामिड मॉडल है जो ये समझाता है, पर मून इस बात पर जोर देते हैं कि इन जिम्मेदारियों का क्रम, इनका महत्व वो अलग अलग कल्चर में बहुत अलग हो सकता है।
सही कहा। और ये सिर्फ मतलब दान पुण्य या सिर्फ बिजनेस एथिक्स से भी ज्यादा है। मूल बात यह है कि कंपनी कैसे काम करती है और उसके काम का समाज पर क्या असर पड़ता है, और ये असर कानूनी जरूरतों से भी आगे जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। मून इसकी जड़ें 19वीं सदी तक ले जाते हैं, जैसे ब्रिटेन में कैडबरी परिवार का उदाहरण है।
अच्छा, चॉकलेट वाले।
हाँ वही। उनके जो क्वेकर धार्मिक विश्वास थे, उनकी वजह से उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए अच्छे घर बनवाए, स्कूल खोले, स्वास्थ्य सेवाएं दी।
तो ये एक तरह का इम्प्लिसिट CSR था, मतलब उनकी जिम्मेदारी उनके मूल्यों में, उस समाज की व्यवस्था में शामिल थी, अलग से कोई पॉलिसी बनाकर नहीं की गई थी।
मतलब ये पहले से ही सिस्टम का हिस्सा था।
बिल्कुल। फिर जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनी जहां मालिक कोई और, मैनेजमेंट कोई और, तब ये सवाल उठा कि भाई कंपनी का मकसद क्या है? सिर्फ मुनाफा? 20वीं सदी के मध्य में खासकर अमेरिका में एक्सप्लिसिट CSR का चलन बढ़ा।
एक्सप्लिसिट
मतलब खुलकर बताना। हाँ, वहां सरकार का दखल व्यापार में कम था, तो कंपनियों ने खुद से वॉलंटरिली सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए और उनके बारे में बताना भी शुरू किया, अपनी सामाजिक भूमिका को ज्यादा जोर शोर से पेश किया।
तो इस बैकग्राउंड से ये सवाल उठता है कि आज कंपनियां CSR क्यों कर रही हैं? क्या सिर्फ अच्छा दिखने के लिए या कुछ और भी वजह है?
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। मून के विश्लेषण के हिसाब से इसके पीछे दो मुख्य तरह के तर्क काम करते हैं। पहला और आजकल शायद सबसे ज्यादा असरदार है व्यावसायिक कारण, यानी बिजनेस केस।
बिजनेस केस मतलब कंपनी का फायदा।
हाँ, सीधा मतलब है कि CSR करने से कंपनी को ही फायदा होता है कई तरीकों से, जैसे साख और ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, लोग जिम्मेदार कंपनियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं।
ये तो है।
फिर जोखिम कम होता है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर कंपनियां पर्यावरण या कर्मचारियों के मुद्दे पर लापरवाही बरतें तो स्कैंडल हो सकते हैं, बॉयकॉट हो सकता है।
हाँ, जैसे वो नाइकी वाला केस हुआ था 90s में सप्लाई चेन को लेके।
बिल्कुल, वो बाल मजदूरी वाला विवाद, उसने कंपनी की साख को बहुत धक्का पहुंचाया था। तो CSR ऐसे जोखिमों को कम करता है। फिर अच्छे कर्मचारियों को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना। आजकल की पीढ़ी ऐसी जगह काम करना चाहती है जहां के मूल्य उनके अपने मूल्यों से मेल खाते हों।
ये भी सही है।
और चौथा, नवाचार और नए बाजार। कई बार सामाजिक समस्याओं के हल ढूंढने से नए बिजनेस आइडिया निकलते हैं, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी या माइक्रो फाइनेंस। तो ये सर खर्चा नहीं, एक स्ट्रेटेजिक निवेश बन गया है।
ठीक है, ये तो हुआ बिजनेस केस। और दूसरा तर्क क्या है? क्या सिर्फ फायदे के लिए होता है सब?
नहीं, दूसरा तर्क है नैतिक कारण, यानी एथिकल केस। ये कहता है कि कंपनियों का नैतिक फर्ज है कि वे समाज पर अपने असर का ध्यान रखें और सही काम करें, भले ही उससे तुरंत कोई सीधा पैसा ना बन रहा हो।
अच्छा,
ये स्टेक होल्डर थ्योरी पर आधारित है। मतलब कंपनी सिर्फ शेयर धारकों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जवाबदेह है जो उसके काम से प्रभावित होते हैं। कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर्स, समुदाय, पर्यावरण, सब।
तो मुनाफा और जिम्मेदारी दोनों में बैलेंस बनाना।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सब लोग CSR के फैन हो? इसके खिलाफ भी तो आवाजें उठती हैं।
हाँ बिल्कुल उठती हैं। और सबसे मशहूर आलोचना शायद अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की है। उन्होंने 1970 में कहा था कि भाई व्यापार की एकमात्र सामाजिक जिम्मेदारी है अपने मुनाफे को बढ़ाना, बस नियमों के दायरे में रहकर।
अच्छा, इसे ही शेयरधारक प्रधानता कहते हैं।
हाँ, फ्रीडमैन का तर्क था कि मैनेजर तो शेयरधारकों के एजेंट है। अगर वो शेयरधारकों का पैसा सामाजिक कामों पर खर्च करेंगे तो ये एक तरह से टैक्स लगाना हुआ बिना अधिकार के, और ये काम उनकी विशेषज्ञता का भी नहीं है। ये पैसा शेयरधारकों को मिलना चाहिए, वो चाहें तो दान करें।
ये तो एक मजबूत तर्क लगता है। और क्या आलोचनाएं होती हैं CSR की?
कई और भी हैं, जैसे एक शब्द आजकल बहुत चलता है, ग्रीन वॉशिंग।
ग्रीन वॉशिंग, ये क्या होता है?
मतलब कंपनियां CSR का ढोंग करती हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, जबकि उनके असली काम करने के तरीके पर्यावरण या समाज के लिए नुकसानदेह होते हैं। बाहर से हरे दिखना पर अंदर से।
अच्छा, जैसे वो BP वाला मामला था, बियॉन्ड पेट्रोलियम कहते थे पर फिर भी ऑयल स्पिल हो गया।
हाँ बिल्कुल, वैसा ही। उसे क्लासिक उदाहरण माना जाता है ग्रीन वॉशिंग का। फिर एक आलोचना है विशेषज्ञता की कमी की, कि भाई बिजनेस वाले लोग सामाजिक समस्याएं हल करने के लिए सही नहीं है, ये काम सरकार या NGOs का है। और एक चिंता ये भी है कि बड़ी कंपनियां CSR के जरिए सामाजिक एजेंडा तय करने लगती हैं, नीति निर्माण पर असर डाल सकती हैं, जो कि चुनी हुई सरकारों का काम है। इससे लोकतंत्र कमजोर हो सकता है।
तो इतने सारे तर्क वितर्क हैं, पर जमीन पर असलियत में कंपनियां करती क्या है सीएसआर के नाम पर?
हाँ, ये जानना जरूरी है। मून इसे एक तरह का सीएसआर मेन्यू कहते हैं। कंपनियां इसमें से अपनी जरूरत और हालात के हिसाब से चुनती हैं। इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आचार संहिता बनाना, कोड्स ऑफ कंडक्ट, अपने कर्मचारियों सप्लायर्स के लिए नियम जैसे काम के घंटे, सुरक्षा, पर्यावरण मानक वगैरह।
ओके।
फिर है हितधारक जुड़ाव, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, मतलब कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदायों, एनजीओ से बातचीत करना, उनकी सुनना, उनकी चिंताओं को अपनी पॉलिसी में शामिल करना, और आजकल बहुत जरूरी हो गया है रिपोर्टिंग और पारदर्शिता।
हाँ, रिपोर्ट्स तो बहुत आती हैं आजकल।
बिल्कुल, कंपनियां बताती हैं कि उन्होंने क्या किया, उसका क्या असर हुआ। इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड भी बन गए हैं, जैसे GRI, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। इससे उनकी जवाबदेही तय होती है, कई जगह तो अभी अनिवार्य भी है। फिर है सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश, SRESG। अब इन्वेस्टर्स भी सिर्फ मुनाफा नहीं देखते
जी।
वो कंपनियों का ESG रिकॉर्ड देखते हैं, एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस, और उसके आधार पर पैसा लगाते हैं।
ESG आजकल काफी सुनने में आता है।
हाँ, फिर वो पारंपरिक चीजें भी हैं, परोपकार, दान देना, स्कूल अस्पताल बनवाना, कर्मचारियों को वॉलंटियर करने भेजना, और कॉज रिलेटेड मार्केटिंग भी है, जब कोई प्रोडक्ट की बिक्री का हिस्सा किसी अच्छे काम के लिए जाता है।
अच्छा,
लेकिन मून इस बात पे जोर देते हैं कि असली CSR तब है जब ये सब कंपनी की मेन स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, सिर्फ एक अलग थलग डिपार्टमेंट का काम ना हो।
ये बात अहम है। अच्छा, आपने शुरू में मून के इम्प्लिसिट बनाम एक्सप्लिसिट CSR वाले आइडिया का जिक्र किया था।
हाँ,
जरा उसे समझाइए, वो क्यों जरूरी है?
हाँ, ये मून के काम का शायद सबसे खास हिस्सा है। वो समझाते हैं कि दुनिया भर में CSR एक जैसा क्यों नहीं है। उनके मुताबिक दो मुख्य मॉडल हैं।
पहला है
इम्प्लिसिट CSR, यानी अंतर्निहित CSR।
अंतर्निहित?
हाँ, ये उन देशों में ज्यादा होता है जहाँ कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारियाँ उस देश के कानूनों, नियमों, सामाजिक रीतियों में पहले से ही शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए जर्मनी या जापान, वहाँ कर्मचारियों की सेहत, पेंशन, पर्यावरण सुरक्षा, ये सब सरकार तय करती है, यह समाज की अपेक्षा होती है। कंपनियां इन्हें इसलिए पूरा करती हैं क्योंकि ये सिस्टम का हिस्सा है, उन्होंने अलग से कोई CSR पॉलिसी नहीं बनाई होती, जिम्मेदारी निहित है।
अच्छा, मतलब ये नॉर्मल तरीका है वहां काम करने का?
बिल्कुल। और दूसरा है एक्सप्लिसिट CSR, यानी स्पष्ट या घोषित CSR। ये उन देशों में ज्यादा है जहां नियम उतने कड़े नहीं होते। कंपनियां खुद से अपनी मर्जी से सामाजिक मुद्दों पर नीतियां बनाती हैं, कार्यक्रम चलाती हैं और उनके बारे में बताती भी हैं।
जैसे अमेरिका, ब्रिटेन में?
हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये ज्यादा आम है। यहाँ CSR ज्यादा वॉलंटरी है, ज्यादा बताया जाता है।
ये तो बहुत ही दिलचस्प फर्क है। तो क्या दुनिया एक ही दिशा में जा रही है या ये फर्क बना रहेगा?
मून का मानना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इन दोनों मॉडलों में एक तरह का कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब वो करीब आ रहे हैं।
कन्वर्जेंस कैसे?
ऐसे कि जो यूरोपीय कंपनियां पहले सिर्फ इम्प्लिसिट जिम्मेदारियां निभाती थीं, अब उन्हें अपने ग्लोबल ग्राहकों और निवेशकों को बताने के लिए ज्यादा एक्सप्लिसिट तरीके अपनाने पड़ रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग करना, वेबसाइट पर बताना।
अच्छा,
और दूसरी तरफ अमेरिकी या ब्रिटिश कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है कि वे सिर्फ बातें ना करें बल्कि इन जिम्मेदारियों को अपनी कंपनी के काम करने के तरीके में ज्यादा गहराई से, इम्प्लिसिट तरीके से शामिल करें। मतलब दुनिया भर में एक जैसे स्टैंडर्ड अपनाने का दबाव तो है, लेकिन उन्हें लोकल जरूरतों के हिसाब से ढालना भी जरूरी है।
समझ गया। और आगे CSR का भविष्य कैसा लग रहा है? क्या नए ट्रेंड्स हैं?
मून कुछ जरूरी रुझानों की तरफ इशारा करते हैं। एक तो सरकारों की भूमिका बढ़ रही है, वो सिर्फ नियम नहीं बना रही बल्कि इनाम देकर कंपनियों के साथ मिलकर CSR को बढ़ावा दे रही हैं,
पार्टनरशिप करके।
हाँ, दूसरा, नागरिक समाज ज्यादा ताकतवर हुआ है। NGOs, एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया, ये सब कंपनियों पर पैनी नजर रखते हैं, उन्हें जवाबदेह बनाते हैं। वो नाइकी वाला मामला इसका सबूत है।
हाँ, वो तो है।
तीसरा, ग्लोबलाइजेशन और सप्लाई चेन। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब उनकी सप्लाई चेन है, जो अक्सर विकासशील देशों में होती है। वहां मजदूरों के अधिकार, पर्यावरण मानक, ये सब देखना बहुत मुश्किल है।
ये तो बहुत बड़ी चुनौती है।
और चौथा, शायद सबसे बड़ा मुद्दा, जलवायु परिवर्तन। ये CSR को बहुत तेजी से बदल रहा है। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं मांग रहा, बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल में बदलाव की बात कर रहा है, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी या पर्पस ड्रिवन बिजनेस, मतलब ऐसे बिजनेस जिनका मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं, कोई बड़ा सामाजिक या पर्यावरणीय लक्ष्य भी हो।
तो पर्पस ड्रिवन बिजनेस।
तो कुल मिलाकर मून का निष्कर्ष ये है कि CSR अब इस बारे में कम है कि कंपनियां अपने मुनाफे का क्या करती हैं, और इस बारे में ज्यादा है कि वे मुनाफा कैसे कमाती हैं।
अच्छा,
ये अब कंपनी की कोर स्ट्रेटजी का हिस्सा बन रहा है और शायद ग्लोबल गवर्नेंस का भी हिस्सा बन रहा है, जहां कंपनियां उन वैश्विक समस्याओं को हल करने में भूमिका निभा रही हैं जिन्हें अकेली सरकारें शायद नहीं कर पा रही।
इस पूरी बातचीत से कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं मेरे ख्याल से। पहली तो यही कि भाई CSR कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो हर जगह फिट हो जाए। ये जगह, समाज, वक्त के हिसाब से बदलता है।
बिल्कुल।
भारत में जो प्रायोरिटी है वो जरूरी नहीं जर्मनी में भी हो। लोकल कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है।
एकदम सही।
दूसरी बात, ये अब सिर्फ अच्छा काम नहीं रहा, ये बिजनेस चलाने के तरीके का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। कंपनी की स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, साख, सब इससे जुड़ा है। कंपनियां इसे अब एक निवेश मान रही हैं, सिर्फ खर्चा नहीं। तीसरी बात, सोल बदल रही है। कंपनियां अब सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, उनके सभी हितधारकों, कर्मचारी, ग्राहक, समाज, पर्यावरण, सबके प्रति उनकी जिम्मेदारी समझी जा रही है। कंपनी के होने का मकसद ही अब बड़ा हो गया है। और चौथी बात, पारदर्शिता और जवाबदेही, इनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंपनियां जो कहती हैं उन्हें करके दिखाना पड़ता है, सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलता, लोग सबूत मांगते हैं, वरना ग्रीन वॉशिंग का ठप्पा लग जाता है और भरोसा टूट जाता है।
बिल्कुल।
और पांचवी बात, ग्लोबलाइजेशन ने इसे और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कंपनियों की जिम्मेदारी अब सिर्फ उनकी फैक्ट्री तक नहीं है, उनकी पूरी सप्लाई चेन, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसके प्रति भी वो जवाबदेह हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है।
हाँ, और मून के काम से कुछ ऐसे विचार भी मिलते हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि CSR कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्रीय संस्थाओं और संस्कृति से आकार लेती है जिसमें व्यवसाय संचालित होता है। यह हमें याद दिलाता है कि लोकल सॉल्यूशंस जरूरी हैं।
सही काम। और ये ट्रेंड भी ध्यान देने लायक है। हम इम्प्लिसिट CSR के एक्सप्लिसिट बनने की वैश्विक प्रवृत्ति देख रहे हैं। मतलब जो चीजें पहले सिस्टम में थीं, अब कंपनियां उन्हें खुलकर बता रही हैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए।
हाँ, और ये भी कि बहस अब कहाँ पहुंच गई है। आधुनिक बहस ये नहीं है कि क्या निगमों की सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, बल्कि यह है कि वे जिम्मेदारियां क्या हैं और उन्हें कैसे निभाया जाना चाहिए।
वाओ।
मतलब अब सवाल हाँ या ना का नहीं रहा, अब सवाल है क्या और कैसे,
दायरा क्या हो और करें कैसे। बिल्कुल। और भविष्य की तरफ देखते हुए ये विचार बहुत गहरा है। CSR नई वैश्विक व्यवस्था का एक प्रमुख तत्व बन गया है, जो कमजोर होते राष्ट्र राज्यों द्वारा छोड़े गए खालीपन को भर रहा है। यानी कंपनी अब ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी रोल निभा रही है।
हाँ, जहाँ शायद सरकारें पीछे रह जाती हैं। तो ये सारी बातें सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? कोई कैसे जोड़े इसे अपनी लाइफ से?
हाँ, ये सबसे अहम सवाल है और इसके कई जवाब हो सकते हैं। जैसे अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा है तो सिर्फ सैलरी ना देखें, कंपनी की CSR रिपोर्ट पढ़ें, पता करें कि वो कितने गंभीर हैं समाज और पर्यावरण को लेकर, क्या उनके मूल्य आपसे मिलते हैं, ये एक जरूरी फैक्टर हो सकता है।
सही बात है।
एक ग्राहक के तौर पर भी हम फर्क ला सकते हैं। सिर्फ विज्ञापन ना देखें, थोड़ा पता करें कि प्रोडक्ट बना कैसे है, क्या कंपनी जिम्मेदार है, हमारी खरीदारी भी एक तरह का वोट है।
हाँ, और अगर कोई कहीं काम करता है तो वो अपनी कंपनी के अंदर भी बेहतर CSR की बात कर सकता है।
जी।
सुझाव दे सकता है कि कंपनी और ज्यादा सस्टेनेबल और ज्यादा एथिकल कैसे बन सकती है। ये सिर्फ एक दिन पेड़ लगाने से ज्यादा है, ये रोज के काम करने के तरीके से जुड़ा है।
बिल्कुल। और अगर कोई बिजनेस चलाता है या मैनेजर है
तो उनके लिए तो ये है कि CSR को बोझ ना समझें, इसे अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं।
जी।
इससे साख बढ़ सकती है, रिस्क कम हो सकता है, नए ग्राहक मिल सकते हैं, अच्छे कर्मचारी जुड़ना चाहेंगे। लंबे समय में ये फायदे का सौदा है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये है कि CSR कितना बहुआयामी और लगातार बदलता हुआ विषय है। ये सिर्फ कुछ अच्छे काम करने तक सीमित नहीं है, ये इस बात की गहरी समझ है कि बिजनेस समाज को कैसे प्रभावित करता है और उस प्रभाव को बेहतर कैसे बनाया जाए। वो इम्प्लिसिट बनाम एक्सप्लिसिट वाला फ्रेमवर्क मुझे खास तौर पर बहुत दिलचस्प लगा। ये दिखाता है कि सतह के नीचे कितने गहरे कारण होते हैं।
कि CSR अब धीरे धीरे कंपनियों के काम करने के मूल तरीके का हिस्सा बन रहा है, कोर ऑपरेशंस का। ये सिर्फ मार्केटिंग का टूल नहीं रहा, शायद भविष्य उन्हीं कंपनियों का है जो मुनाफा कमाने के साथ साथ समाज और पर्यावरण की बड़ी समस्याओं को सुलझाने में भी योगदान देंगी। इसे ही शायद साझा मूल्य, शेयर्ड वैल्यू बनाना कहते हैं, जहां कंपनी की सफलता और समाज की भलाई दोनों साथ साथ चलें। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां CSR को आगे और कैसे बदलेंगी और कंपनियां उन पे कैसे रिएक्ट करेंगी। तो सार ये है कि मून के नज़रिए से CSR सिर्फ कंपनियों का अच्छा काम नहीं, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज के चलने का एक ज़रूरी, लगातार बदलता हुआ हिस्सा बन गया है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।